ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس دعا کو پڑھنے سے کثرت سے اس دعا کو پڑھے تو یہ چیز خاتمہ ایمان پر دلائے گی. اسی بارے میں کچھ گزارشات سے اس دن عرض کی تھی وہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کیا. بہرحال دعا کا مضمون رہ گیا تھا کہ ربنا جو دعائیں ہیں, عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب الابدان بھی ہے اور رب الارواح بھی ہے. بدن ہمارے جسمانی نشو نما پرورش اور تربیت کے لیے رزق بھی وہی عطا فرماتے ہیں اور روحانی نشو نما پرورش اور تربیت کے لیے بھی رزق وہی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جسمانی تربیت کے لیے ماں باپ پیدا فرمائے, ماں باپ عطا فرماتے ہیں ماں باپ کے ذریعے سے اولاد. روحانی تربیت کے لیے جو باپ ہوتا ہے اس کو شیخ اور استاذ کہا جاتا ہے, یہ روحانی تربیت فرماتا ہے. اصل میں پہلے یہ صورتحال تھی کہ استاذ جو ہوتا تھا جس سے دینیات پڑھا جاتا تھا, درسیات پڑھی جاتی تھی, تو وہ استاد خود صاحب نسبت ہوتے تھے اور صاحب نسبت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ درسیات کے ساتھ ساتھ وہ تربیت بھی کرتے تھے, وہ تربیت بھی کرتے تھے. اس لیے پہلے خانقاہیں علیحدہ نہیں تھی, استاد سبق بھی پڑھاتا تھا ساتھ تربیت بھی کرتا تھا, شاگرد کو دیکھتا تھا بھالتا تھا. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت, جس طالب علم کے اندر دیکھتے تھے کہ کچھ ذرا اکڑ بکڑ ہے, کچھ ذرا, کیونکہ نواب بھی پڑھتے تھے حضرت کیا, تو دیکھتے تھے کہ جس کے اندر کچھ ذرا میں ہے اس سے جوتیاں اٹھواتے تھے. اور اس سے عجیب بات دیکھیے, یہ بات تو چلو سمجھ آئے نا, اس سے عجیب بات دیکھیے, جس کے اندر توازو دیکھتے تھے اس کی جوتی خود اٹھا لیتے تھے. کیا کہے سبحان, تصور کرے آپ, کہہ دینا آسان ہے, یہ ایسے آدمی تھے اتنے میٹھے میں. تو اب یہ کیا, یہ تربیت ہے. یاد بات پہ یاد آ جاتی ہے, مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, شہزادے تھے بڑے, تربیت بھی شہزادے, بڑا شاندار لباس پہنتے تھے, لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ بس یہ لباسوں کی فکر میں ہیں. اب ایک واقعہ تھا کہ مسجد کے اندر ایک جگہ تھی جہاں چھوٹا سا کھڈا بنا تھا, تو پہلے چونکہ لگتا پہلے کتابوں میں ذکر ہے نا کہ سجدے میں مکروہات میں سے لکھا ہے کہ سجدے کی کنکریوں کو درست نہ کریں, عمل کثیر نہ کریں, یا اگر ایسی ہو تو ایک مرتبہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے ہاتھ پیر کے برابر کر دیں لیکن بار بار اس کو ٹھیک نہ کریں, کیونکہ کچی مسجدیں ہوتی تھی. تو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اب وہ شاندار لباس پہنتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مسجد کی میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی, جب بارش ہوتی تھی وہ چھوٹا سا کھڈا تھا تو وہاں تھوڑا سا کیچڑ جم جاتا تھا. اب بارش کا زمانہ تھا, کچھ بارش ہوئی تو جو آدمی آئے ظاہر بات اس سے بچ کے بیٹھے گا. صف اول تھی, صف اول کا ایک ثواب ہے. اب مولانا اسماعیل شہید آئے اور اس بڑھیا لباس پہنے ہوئے, شاندار لباس, عمدہ, قیمتی, بیش قیمت, دیکھا صف اول میں کئی جگہ نہیں, وہی جگہ تھی وہی جا کے بیٹھے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس شخص کے دل میں لباس کی کوئی وقت اور حیثیت ہوتی تو کیوں بیٹھتا, کہ جہاں کوئی نہیں بیٹھا وہاں وہ جا کے بیٹھے. तो फरमाते थे इन लोगों को हक हासिल है बढ़िया लिबास पहनने का। तो उस्ताद जो है वो पहले तरबियत। हाँ, तो माँ इस्माइल शहीद का वाकया के एक साहब थे हजरत का जिहाद का माँ मशहूर है, अपने शेख और मुर्शिद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ बालाकोट में जाकर जामे शहादत नोश फरमाया। और हालांकि इनकी उम्र सैयद साहब से अपने शेख से 10 बरस ज्यादा थी और इल्म में भी बड़े हुए थे, लेकिन जिस चीज की वजह से शेख बनाया जाता है, लिहाजा उनको बुजुर्गों ने उलमा ने अपने वक्त का मुजद्दिद फरमाया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत के काफिले में एक साहब थे बहुत नाजुक मिजाज, वहां शाह इस्माइल शहीद के रफका में से थे, नाजुक मिजाज बहुत थे, इतने नाजुक मिजाज थे कि कोई नाक भी सुड़के ना छिंके तो वो बस उनको कुछ होने लगता था। अब मौलाना ने अब तरबियत कैसे की उनकी, क्योंकि जिहाद में जा रहा है ये सब काम तो नहीं चलेंगे, वहां जैसे बैतुल खला है बाजों को अपने बैतुल खला के बगैर इस्तिंजा भी नहीं होता, इसलिए सफर में जाते हैं तो 3 दिन बैतुल खला भी नहीं जाते। मान लो 3 दिन के लिए सफर में गए ना, तो छोटा इस्तिंजा तो कर लेंगे, बड़ा इस्तिंजा तो बाद लोगों को पता चला 15 दिन भी जाए तो नहीं करते, ऐसे भी लोग। तो बहरहाल अब सैयद साहब ने शाह साहब वहां इस्माइल शहीद ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा कि भाई जिहाद पे जा रहा है वहां तो ये सब थोड़ी, वहां पे कौन से बेड लगे होंगे गद्दे लगे होंगे और बैतुल खला ऐसे, वहां तो हर जगह कहीं भी जहां मौका मिले बैठना छोटा हो बड़ा हो सब कुछ। अब उन्होंने क्या किया कि एक बार तब दस्तरखान पर बैठे तो मौलाना इस्माइल शहीद ने क्या किया कि वो बराबर बैठे थे, खाना सामने आ गया, उन्होंने नाक छुड़के। अब उनको तो इतनी नाजुक मिजाज उठे और कराहियत आई और उड़ गए, वो सब नाक ऐसे की। अब वो उठ के चले गए, हजरत ने कुछ नहीं किया। दूसरा वक्त आया, अब वो खाना ही नहीं खाया उन्होंने, दूसरा वक्त आया खाना खाने का, मौलाना ने अपने बराबर बिठाया, फिर क्या किया कि नाक को थोड़ी सी और अब के बलगम अब के नाक जरा निकाली, अब उनको और कराहियत आई, वो उठ के चले गए। तीसरा वक्त खाने का आया तो अब मौलाना ने क्या किया कि खाना सामने आया करके ऐसे हाथ में यूं किया और ज्यादा, उनको कराहियत आई उठ के चले गए। अब वो भी समझ रहे हैं, मौलाना भी समझ रहे हैं, अब तरबियत का अंदाज देखिए। अब जो चौथा वक्त खाने का आया तो अब मौलाना नाक की तरफ किया और नाक निकाली, तो अब भूख से बुरा हाल, 3 वक्त खाना नहीं खाया अब तो जान में, तो कहने लगे कि अगर हजरत अब प्लेट में भी डाल दोगे ना फिर भी खाऊंगा। तो मौलाना ने फरमाया मैं यही चाहता था, मुझे ये मतलूब नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता था कि जिहाद पे जा रहे हो वहां ये सब बातें नहीं चल सकेंगी, हर चीज का एक मौका होता है। तो मतलब ये कि हमारे बुजुर्गों ने एक बात फरमाई, अगर किसी की तबीयत में ऐसी है तो एक है तकल्लुफ, एक है बतकल्लुफ और एक है बेतकल्लुफ, यानी एक आदमी का मिजाज है कि वो राहत पसंद है, राहत तलब है, राहत मांगता है, राहत को पसंद करता है, और उसका मिजाज ये है कि अगर वो राहत ना मिले तो कुछ करता ही नहीं है, समझाए ना, जैसे एसी नहीं है तो सोना नहीं है, अपना तकिया ऐसा नहीं है तो सोना नहीं है, गद्दा ऐसा नहीं है तो सोना नहीं है। तो ये आदमी इसको कहते हैं बतकल्लुफ, राहत तलब। और एक आदमी राहत तलब है कि राहत को लेता है, इख्तियार करता है, लेकिन सफर में गया या कहीं ऐसे मौके पर गया, राहत नहीं है तो जो मिला उसी में गुजारा कर लिया, समझाई ना। तो ऐसा आदमी को हमारे बुजुर्गों ने मना नहीं किया कि मतलब क्या, अगर राहत लेता है तो उसकी अपनी ठीक है भाई, राहत की चीज है, वो राहत से इस्तेफादा कर रहा है, राहत से फायदा उठा रहा है, तो फरमाया कि ये कोई वो नहीं। और ऐसे आदमी पर उंगली उठाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि राहत का इख्तियार करना ये खुद एक नेमत है। और सफर में जा रहा है या हजर कहीं और मौसम, या जो राहत वो पसंद करता है वो राहत नहीं मिली तो जो मिला उसी में गुजारा कर लिया, कि ये नहीं कि उसके इंतजार में या फला नहीं है तो जी हमने करना ही नहीं है, हमने सोना ही नहीं है, हमने ये खाना नहीं है, हमने ये नहीं करना। तो ऐसे आदमी पर कोई नकीर नहीं है, बल्कि ये तो उसकी फनाइयत की अलामत है कि जैसा हुआ वैसे अपने को रख लिया। क्योंकि बाज़े लोगों का एक मिजाज होता है कि राहत होते हुए मशक्कत को इख्तियार करते हैं, राहत के होते हुए भी मशक्कत को इख्तियार करते हैं। हमारे अक्सर बुजुर्गों का शौक ये नहीं है, क्योंकि अक्सर इसलिए कहते हैं कि बाज़े ऐसे हैं जो ये करते हैं। तो हमारे अक्सर बुजुर्गों का शौक ये नहीं है, हकीम उल उम्मत का बिल्कुल शौक नहीं है, सिलसिला थानविया का तो जर्रा बराबर शौक नहीं है, हकीम उल उम्मत का जर्रा बराबर शौक नहीं है। क्या मतलब, यानी उनका शौक ये है कि देखो अगर राहत मुयसर हो तो राहत लो, उससे फायदा उठाओ, इस्तेफादा करो, इस्तिमता करो, अगर राहत मुयसर है। और नहीं है तो जैसी हालत हो वैसी हालत के मुताबिक अपने को ढाल लो। ये तरबियत है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। ये बाज़ अकाबिर हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे सर के ताज हैं, वो राहत के होते हुए भी मशक्कत को लेते हैं, लेकिन हकीम उल उम्मत का शौक नहीं है, ये हकीम उल उम्मत का शौक नहीं है। हाँ, बतकल्लुफ को मना किया, अगर थोड़ी सी तलब से भी मिल जाए तो उसको भी मना नहीं किया, शरीयत भी मना नहीं करती, लेकिन बतकल्लुफ राहतों में रहना कि अगर ये नहीं होगा तो करेंगे ही नहीं, इस चीज को मना किया। ये चीज है जो कि मुनासिब नहीं है। इसलिए एक है राहत में वो शख्स, राहत तलब ऐसा शख्स, आसान तलब और सहूलत तलब वो शख्स, जो अगर सहूलत और राहत ना मिले तो जी कुछ करना ही नहीं है, ऐसे शख्स को कहते हैं ये बेतकल्लुफ है, बातकल्लुफ है, ये तकल्लुफ है इसमें, इस चीज को मना किया। बल्कि हदीस शरीफ में आया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतनाइमीन, कि अल्लाह ताला बतकल्लुफ नेमतों में रहने वाले को पसंद नहीं फरमाते, वो इससे ये मुराद है। और एक आदमी राहत को हासिल करना चाहता है और राहत के हुसूल की कोशिश भी करता है तो याद रखिए ये मुतनाइम नहीं है। ये अगर अगर वो राहत ना मिले तो जो मिला उसमें गुजारा कर लिया, हालांकि हुसूल की कोशिश करता है। तो याद रखिएगा, हुसूल राहत और तलब राहत इसको शरीयत ने मना नहीं किया। ये समझाने की बात है कि बाजों का होता है ना जी मशक्कत लो, बिला वजह मशक्कत लो, ये दुरुस्त नहीं है कि तनाउम मुतनाइम यानी वो शख्स जो बतकल्लुफ नेमतों में रहे उसको तो नापसंद किया। और उससे मुराद कौन है कि जो राहत लेने के तलब करता है, हुसूल हासिल करने की फिक्र करता है और अगर ना मिले तो करता नहीं है, काम ही नहीं करता, समझ में आ गई ना। और एक वो है जो राहत के हुसूल की कोशिश करता है, राहत की तलब की फिक्र करता है कि जी मुझे फला चीज मिल जाए, फला खाना मिल जाए, फला राहत मिल जाए, लेकिन अगर वो ना मिले तो जो मिल जाए उस पर गुजारा करता है। तो ऐसे शख्स को मुतनाइम नहीं कहा जाएगा, तनाउम पसंद नहीं कहा जाएगा, समझ में आ गई ना। तो तकल्लुफ नहीं है ना कि मिला तो उस पर कोशिश भी करता है। याद रखिएगा, समझाने की बात यह है कि कोशिश करना यह मना नहीं है। एक आदमी अगर तलब राहत की फिक्र और कोशिश करता है तो यह ज़ौक़े शरीयत के खिलाफ नहीं है, हरगिज़ ना ज़ौक़े शरीयत के खिलाफ है ना ज़ौक़े विलायत के खिलाफ है। समझ में आ गई कि अगर कोई आदमी राहत को तलब करना चाहता है, राहत को हासिल करना चाहता है तो ये इसको मना नहीं किया, विलायत के भी खिलाफ नहीं है। हाँ, बुरी चीज क्या है कि अगर वो राहत न मिले तो उस राहत को न मिलने की वजह से वो कोई काम ही ना करे। समझ में आ गई? एयर कंडीशन है तो एयर कंडीशन में सो गए, नहीं है तो वैसे ही सो गए। सही है ना जनाब? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। हाँ, अगर एक तकलीफ है, मसलन लाइट नहीं है, अब तकलीफ है, उसको नींद नहीं आ रही, ये और चीज है। उस तकलीफ पे राजी बकजा है, लेकिन उस तकलीफ की वजह से उसको नींद नहीं आ रही तो याद रखिएगा, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो अपनी तरफ से उस पर नेमत पर, उस नेमत के ना होने पर राजी है, लेकिन उसकी वजह से उसको एक तकलीफ है, तो तकलीफ का होना ये और बात है। और इसका बाल मरता उम्र के साथ भी होता है, जैसे जवानी होती है, मच्छर भी काट रहे हैं और वो भी कट रहे हैं और वो भी है, जैसे भी है, पढ़ के सो गए, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ फिर वो बातें नहीं रहती, वैसे ही नींद कम हो जाती है, वैसे ही नींद कम, जरा सी आहटों से आंख खुलती है। अब जवानी होती है वो गधे घोड़े ढोल बाजे सब बजा लो सब चिल्ला लो, लेकिन वो जनाब टस से बस नहीं होते, तो एक वक्त। और बुढ़ापा आता है तो जरा सी कोई सांस भी ले तो आंख खुल जाती है, सांस के बाद से भी आंख खुल जाती है, तो ये और चीज है। तो इसको बतकल्लुफ नहीं कहा जाएगा, ये एक बशरी तकाजा है जिससे वो जो इस मामले में वो माजूर है। तो एक बात समझ में आ गई ना, ये बहुत अहम मसला है, ये बहुत अहम मसला है। दादा हकीमुल उम्मत का जौक है, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह का जौक था, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का जौक वो ये कि अगर तुम्हें राहत मिलती हो तो राहत को इख्तियार कर लो, नेमत को ले लो, लेकिन अगर उस नेमत को, यानी अगर नेमत की तलब में भी थोड़ी सी कोशिश भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस नेमत के न मिलने की वजह से, नेमत के न मिलने की वजह से पता चला खाना भी नहीं खाया, मसलन जी दिल चाह रहा है कि चलो जी हम मजेदार की हलीम खाएंगे या फला जगह की कोई चीज खाएंगे, उसने कहा अच्छा भाई ले आओ या मंगवा लो, अब वो दुकान बंद है या वो नहीं मिला, वो काम खत्म हो गया, या कोई लाने वाला नहीं है, ले जाने वाला नहीं है, तो जी हमने खाना ही नहीं है बस। समझ आ गई ना? ये चीज मना है, और अगर उसकी गुंजाइश भी है, हैसियत भी है, कोई कर भी सकता है, तो इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी नफ्स को मजा देने में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है ये हलाल मजा है, और नफ्स को हलाल मजे से न रोकना चाहिए, हराम के पे लगाम कस के रखे और हलाल से कभी कभी इस्तेफादा कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं। और कभी कभी चले जाए कि चलो खाना खाने जाएंगे, उसमें 400 रुपए लगेंगे, आज मैं खिला दूं कल तुम खिला दो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बतकल्लुफ, एक है बतकल्लुफ राहत में रहना और एक है बेतकल्लुफ रहना, तो इसमें फर्क है, दोनों में फर्क है। अगर हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को फरमाया एक शख्स था, अब वो मार्फत और चीज है, अजीब चीज है। अब वो सालन मजेदार आया कौरमा, जनाब ने उसमें पानी डाल दिया कि नफ्स को मजा नहीं लेने दूंगा। तो एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, आरिफ थे, फरमाया काश के अगर ये आरिफ होता, मार्फत होती, तो ये यही सालन खाता, हर हर लुकमे में इसके दिल से शुक्र निकलता। और कहता है वाह मौला, क्या आपने बकरा दिया, क्या खाना, क्या पकाना, क्या पकाने वाला। हजरत के अजीब अल्फाज है वो, बाज में भी किसी चपे में, हमें उस बयान में था जब हजरत ने फरमाया, तो फरमाया कैसे एक एक लुकमे से। अब वो सारा, फरमाया कि वो सारा मजा, अब वो पानी डाला मजा तो चला गया ना, फरमाया इसका खाना नहीं होगा, अब इसका ठूसना होगा। दादा ऐसा हुआ, बाजे लोग गए किसी जगह पर, अब उन्होंने फैसला किया जी, मशवरा किया कि हम खाना ऐसा नहीं खाएंगे। अब वो किसी से भी नहीं खाना गया खाएगा, तो दो दोस्तों ने कहा चलो यार हम देखें, तो चलो हम कहीं खाना खाते हैं, तो हम तबीयत नहीं हुई। अब जब वहां पे गए तो जो मशवरा देने वाले साहब थे वो भी वही बैठे हुए थे होटल में तो ये तरीका तो उसने, समझा ना? तो जो बुजुर्ग की मुराद है वो मुराद ये है कि नेमत के हुसूल को करो, लेकिन न मिले तो कोई बात नहीं। और नेमतों में इतना मशगूल मत हो कि नेमत देने वाले को भूल जाओ। इसको मना किया, मशगूलिय नेमत को मना किया, कि नेमत को अपना शगल बना लिया, इसको मना किया, या नेमत अगर ना हो तो हिलना भी नहीं है, इसको मना किया। तो हद्द एतदाल को, हद्द एतदाल को फरमा। और बाजू का मजा होता है नेमत होते हुए भी वो मशक्कत इख्तियार करते हैं, उसको मना किया है कि ऐसा ना करो, अपने को बहादुर जरी मत दिखाओ। तो पहले जमाने में उस्ताद जो होते थे वो साहिब निस्बत होते थे, वो दरसियात भी पढ़ाते थे और साथ में तरबियत भी फरमाते थे। लेकिन अब इस जमाने में इसका काल पड़ गया, क्योंकि उस्ताद ने भी, क्योंकि दरसियात पढ़ाने वाले ने भी जब तरबियत नहीं ली, मुरब्बा नहीं बना, तो मुरब्बी कैसे बनेगा। इस वजह से खानकाएं हमारे बुजुर्गों ने अलग बनाई और उधर तरबियत का निजाम और ये सब रखा कि ताकि तरबियत हासिल की जाए और वही अरवाह की तरक्की और उसका जरिया बने। और यही बात इसके गैर तरबियत याफ्ता होने के लिए काफी है कि जो ये कह दे कि मुझे तरबियत की जरूरत नहीं है। क्योंकि बड़े से बड़े अल्लाह वाले को आप जो उरूज पर होगा आप उससे कहें तो वो यही कहेगा हाँ वाकई मैं तो बहुत जरूरत मंद हूं मरते दम तक। लिहाजा आलिम की पहचान यही है जो अपने आप को तालिब इल्म कहे और समझे, ये आलिम की पहचान है। जो कहे कि मैंने तो बड़ा इल्म हासिल किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, इसका मतलब इसको कख नहीं इसके पल्ले लगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए।